पांव पालने में दिखाई देते हैं, लेकिन अगर पालने में से एक बच्ची के रोने के बजाय गाने की सुरीली आवाज आए तो उसे मैथिली ठाकुर कहते हैं। मैथिली ऋषभ अयाची, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी विद ऋचा में।
थैंक यू।
सबसे पहले तो मैं सबकी जरा उम्र जान लूं। मैथिली,
मैं 18, मैं 12।
12,
ऋषभ,
माय गॉड, 12, 16, 18। मैथिली एक बात बताओ, 18 की उम्र पूरी करने से पहले लिटिल चैंप्स, इंडियन आइडल, आई जीनियस, राइजिंग स्टार, इतना लंबा सफर पूरा कर लिया
जी।
सफर की शुरुआत कब और कैसे हुई?
मैं सबसे छोटे से आपको बताती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी, हिंदी बोलना, मतलब हिंदी नहीं, सबसे पहले तो अपना गांव का भाषा ही सुनी, क्योंकि मैं छोटी थी तो हम लोग गांव पे थे, मैं, मम्मी और मेरे दोनों भाई। पापा दिल्ली में थे, अपना जॉब कर रहे थे।
कौन सा गांव?
मधुबनी, बिहार।
हाँ।
और मैं उधर बेनीपट्टी की रहने वाली हूँ, तो मैं वहीं पे दादाजी दादी के साथ रहती थी। और मेरे दादाजी को बहुत शौक है गाने बजाने का, और कीर्तन होता था हमारे दलान पर हर हफ्ते, और बहुत बाहर से अलग अलग अष्टजाम करने वाले कीर्तन लोग आते थे, जो कीर्तन करते थे, तो उन लोगों को दादाजी बुलाते थे, और हर हफ्ते में होता था एक बार, और मैं बैठ करके सुनती थी। तो मेरे दादाजी राम और सीता जी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो मेरा नाम भी कुछ ऐसे ही पड़ गया। मेरा नाम मैथिली है।
हाँ।
मिथिला की रहने वाली हूँ, मिथिलांचल अपना संस्कृति और मैथिली भाषा बोलते हैं। सीता जी का भी नाम मैथिली है एक नाम, और इसका नाम अयाची इसीलिए रखा क्योंकि हमारे बिहार में अयाची बहुत प्रसिद्ध नाम है, और उन्होंने किसी से आज तक कुछ मांगा नहीं, इसलिए याची का भी मीनिंग वही होता है कि जो किसी से कुछ याचना ना करे। और ऋषभ मेरा भाई जो तबला बजाते हैं मेरे साथ, इसका नाम ऋषभ है, जो संगीत का रे है
रे,
उसका पूरा नाम। और गाना तो सब शुरू में ही हो गया था, बचपन में ही सीखना शुरू कर दिया था। मेरे दादाजी मुझे सिखाते थे फोक म्यूज़िक, राम सीता जी से जुड़े विवाह के गाने। विवाह में भी हमारे बिहार में इतना सारा रीति रिवाज है, सबका अलग अलग गाना है, तो सब कुछ समदाउन सोहर जितने पारंपरिक गीत हैं।
अच्छा।
सब कुछ गाना मैंने शुरू कर दिया था। जैसे मैं आपको राम विवाह की दो लाइन सुनाती हूँ
मैथिली में।
जी, मैथिली भाषा में जो शादी के वक्त गाते हैं। फिर फिर जब मैं 7 साल की हुई तब पापा मुझे लेके दिल्ली आए और तब क्लासिकल म्यूजिक सब सिखाना शुरू कर दिया।
एक बात बताओ लेकिन पहले, चलो जो तुम कह रही हो कि इतने शुरू से तुम फोक और राम सीता हाँ। के गा रही हो, कुछ अगर मैं तो कहूँ कि पहला तुम्हें क्या याद है जो सबसे पहले सीखा होगा या सुना होगा, वो अगर सुनाओ।
हाँ, मैथिली भाषा में मैंने सबसे पहले सीखा हाँ। था गाना, तो मैं उसी भाषा में मैं आपको सुनाऊंगी जो मुझे याद है।
बताइए कि आपके पापा ने मुझे बताया कि आपने 3 साल की उम्र से गाना शुरू कर दिया था दादाजी के साथ
जी।
लेकिन इतने छोटे बच्चे को खुद तो याद इतना होता नहीं है, बट आपके घर के लोग कुछ बताते हैं बचपन में जब आप गाती थी या उस समय की कोई बातें, कुछ कुछ मजेदार हाँ, बातें यादें?
मैं अभी भी गाँव जाती हूँ ना तो सब लोग बोलते हैं हाँ अभी अच्छा गाने लगी है, बचपन में तो नाक से गाती थी। मेरा एक टेप रिकॉर्डर में उन्होंने मेरा एक भजन, मेरे जो चचेरे भाई लोग हैं, मेरे दादाजी हैं, उनके भी, हमारी फैमिली बहुत बड़ी है तो सब लोगों ने एक गाना रिकॉर्ड किया बचपन का, जो मैं दलान पे कीर्तन में मैंने गलती से गा दिया था, छोटी छोटी गैया, और मैं सची में तब थोड़ा नाक से गाती थी तो सब बोलते हैं हाँ तुतला रही है इसमें, तो नाक से गा रही है, हाँ अब अच्छा गाने लगे,
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल बीच में
सबसे मान, मतलब बहुत बच्चों का फेवरेट गीत है तो
सुने वो, अब ठीक से गाने लगी होगी वो, दो लाइन सुनते हैं उसकी गाते सब।
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मन को पाले, छोटो सो मेरो मन को पाले, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मन को पाले, छोटो सो मेरो मन को पाले, खास खावे
में कब तक रही दादा के पास, कब तक?
मैं 7 साल की थी तब मैं दिल्ली आ गई थी, 7.5 साल की थी।
लेकिन स्कूल नहीं गई मिथिला में कभी?
नहीं नहीं, हम लोग, मैंने खुद अपना स्कूलिंग जब मैं दिल्ली आकर के और भी कुछ साल बाद जब मैं 6th स्टैंडर्ड में गई
हाँ।
मतलब 6th स्टैंडर्ड मेरा पहला स्कूलिंग था,
तब तक पढ़ाई कैसे हुई?
तब तक मैं घर पे ही पढ़ाती थी। पापा बहुत ग्रामर्स के बुक लेके आते थे, बोलते थे इंग्लिश पढ़ो, थोड़ा इंग्लिश पे भी ध्यान दो। मैं बिल्कुल बिल्कुल मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। फिर इंग्लिश में मम्मी फिर वर्ड मीनिंग्स याद करवाने लगे। मतलब मेरा स्कूलिंग ऐसे ही घर पे जो हुआ ऐसे ही हुआ कि वर्ड मीनिंग्स याद करो, डिक्शनरी खोल के। कुछ समझ में नहीं आता था, डिक्शनरी में से 5 शब्द याद कर लिए इंग्लिश के उसका मीनिंग। और ऐसा कुछ स्कूल का कोई बुक था नहीं, तो मैं ग्रामर ज़्यादा पढ़ती थी, वही पढ़ाते थे। मैथ्स में टेबल 2 से 20 तक ये सब चीज़ था जो मैं 6 से पहले आता था। फिर जब मेरा 6 में एडमिशन हुआ, हमारे स्कूल में जिसमें गई मैं, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था, तो उसमें पहला 6 स्टैंडर्ड में मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आया समझ में कि मैं कहाँ आ गई हूँ, FA1 क्या होता है, SA1 क्या होता है, फिर एग्जाम्स कब होते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो 6 में मेरा कुछ 60 से 70% के बीच में आता, 70-74%
काफी आ गया उस हिसाब से।
हाँ, मैं बहुत टेंशन में थी। फिर 7th से मेरा 94 और 95 आना शुरू हो गया।
इतने मार्क्स आ गए।
हाँ, तब पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी थी।
अब बड़ा अजीब सिचुएशन हुई होगी क्योंकि दूसरे बच्चे मजाक नहीं उड़ा रहे थे, क्योंकि उतनी तुमको इंग्लिश वगैरह भी नहीं आती होगी शायद।
बहुत सबसे पहले तो यही, एक तो बिहार का अगर रहने वाला हूँ ना इंसान, और सामने वाले को पता चल जाए बिहारी है, तो हर बात पे क्या बिहारी जैसे कर रहा है यार। और कोई बिहारी नहीं भी, अगर वो जाट भी हो ना, तो उसको क्या बिहारी है क्या ऐसे बोले। मैं बोली नहीं, वो नहीं है बिहारी, मैं हूँ बिहारी, मेरे को बोलो क्या बोलना है। कोई चीज़ पर गुस्सा आ गया तो गाली की तरह, एक जैसे क्या बिहारी है क्या, कोई भी ढंग से बात करता नहीं था। एकदम से आप किसी अच्छे स्कूल में जाओ जहाँ आपके सारे बच्चे बहुत मतलब हाई क्लास के थे, तो मुझे थोड़ा अजीब फील होता था जब मैं शुरुआत में जाती थी। सब लोग अलग अलग बात पे अलग अलग चीज़ें बोलते थे, तो बस वो टाइम थोड़ा बहुत गंदा टाइम था जो मुझे बहुत गंदा लगता है। जब मेरा मार्क्स कुछ शुरुआत में अच्छा नहीं आता था, मतलब कि 50% या 60%, तो बिहार की है ना, इसको नहीं आता है, क्या समझ में आएगा इसको, अच्छा अभी नहीं नहीं आई है ना, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, स्टूपिड है, ये सब चीज़ बहुत बोला करते थे, तो काफ़ी बुरा लगता था। फिर जब मेरा एकेडमिक्स धीरे धीरे अच्छा होने लगा, 7th में मेरा 94% आया था, फिर 8th में 95% आया, फिर टीचर्स के नज़र में आई कि हाँ ये अच्छा पढ़ती है, फिर धीरे धीरे होता गया, फिर सब बच्चे मतलब सब कुछ ठीक हो गया उसके बाद।
लेकिन तब
मतलब 2-2.5 साल लगे मुझे फिर भी स्कूल में,
और जब मुश्किल वक्त था,
बहुत मुश्किल।
कभी घर आके कहती थी कि मुझे नहीं जाना स्कूल?
काफी बार मैं तो रोज पापा को बोलती थी मुझे नहीं जाना है, और काफी बार मम्मी के सामने फिर रोना पड़ जाता था कि नहीं जाना मुझे स्कूल।
और तब तक ये पहचान भी नहीं बनी होगी कि बहुत अच्छा गाती है, तब तक किसी को इतना पता नहीं
होगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं था, बिल्कुल ऐसा था कि हाँ गांव से उठ करके आई है, एकदम से किसी अच्छे स्कूल में,
बहन जी बोल देते हैं,
कुछ सब कुछ वैसा ही चलता था। वो टाइम था नहीं अपना, फिर अब अपना टाइम आएगा, ऐसा सोचते थे, अपना टाइम आएगा भाई, चलता है ये सब।
लेकिन एक बात बताओ, वापस पीछे ले जाती हूँ, आजकल तो 3.5 साल में 4 साल में बच्चे ये प्ले स्कूल ये सब शुरू हो जाता है, तो तुमको दूसरे बच्चों को देख के लगता नहीं था ये सब स्कूल जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जा रही हूँ?
मुझे नहीं फील होता था, लेकिन मेरे अगल बगल वाले आंटी अंकल बोलते थे रोज, स्कूल क्यों नहीं जाते हो, देखो वो भी जा रहे स्कूल, तुम क्यों नहीं जा रही स्कूल, ये वो। मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि अगर मैं स्कूल उस टाइम पे इतना बर्डन लेती ना, मैं ये चीज में उतना, क्योंकि एक बचपन का वो टाइम होता है जब आप किसी भी चीज़ में इंगेजमेंट नहीं होता है, आप फ्री माइंडेड होते हैं, आपको जो करना होता है आपको करना होता है, तो वो एक सही टाइम था, सही डिसीजन था पापा मम्मी का जो मुझे स्कूल नहीं भेजा।
सही बात है। तो 7 साल की उम्र में जब दिल्ली आई, तब तुमने अपनी क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग पापा के साथ शुरू करी। तो उतना छोटा बच्चा कितने घंटे रियाज कर पाती थी तुम?
मैं शुरुआत में, मेरे को मन नहीं लगता था कि कहाँ इतना मजा आता था गांव में, इधर दिल्ली आ करके क्या कर रहे हैं ये, मुझे क्या सिखा रहे हैं। फिर लेकिन धीरे धीरे 15 मिनट से शुरू होते गया, अभी रोज का 3-3.5 घंटा रियाज।
क्लासिकल ट्रेनिंग की शुरुआत क्या राग यमन से करी?
राग यमन और भोपाली, दो मुझे याद है, राग यमन भोपाली सबसे इनिशियल में। ये दो राग मतलब रटवा दिए थे, फिर राग दुर्गा, फिर ऐसे करके अभी तो बहुत सारे राग पे अभ्यास चल रहा है।
चलो थोड़ा सा प्योर क्लासिकल सुना जाए कुछ।
बिल्कुल। जा जा रे अपने मन बा जा
बहुत खूबसूरत।
थैंक यू।
अच्छा एक बात बताओ, जिस उम्र की तुम बात कर रही हो उस समय 3-3.5 घंटे बच्चे पढ़ना भी नहीं चाहते। एग्जाम के समय मम्मी पापा डांट डांट के बिठाते हैं कि पढ़ने बैठो। उस समय शास्त्रीय संगीत का रियाज तो कोई बच्चा नहीं करना चाहेगा, कैसे किया तुमने?
मेरा एक ही काम था, सुबह उठ करके सा को लगाना, और उतना पापा ने बोल दिया था चाहे मैं सामने में ना रहूं तो बस तुमको ये काम करना, तानपुरा ऑन करके सा मिलाना है, फिर सा नी धा प म। तो मेरे लिए सिंपल था क्योंकि मुझे ध्यान नहीं देना था अभी और क्या। जब पापा होते थे सामने में तब पापा अलग अलग चीज़ें बताते थे, और काफ़ी टाइम जब बाहर होते थे तो फिर मुझे एक चीज़ करना था, सा और नीचे प तक का रियाज।
चलो तुम्हें ना एक मैसेज सुनवाती हूँ, जो तुम्हें जो जैसे टाइम बदला है उस मैसेज में उस टाइम बदलने की बात हुई है। तुम्हारे लिए एक मैसेज आया है,
मैंने आपके एपिसोड्स में देखा है, आप बहुत सरप्राइज देते हो, मैं वेट कर रही हूँ।
मुझे याद है करीब 1.5 साल पुरानी बात है कि मैं कार्यक्रम के लिए आई हुई थी बेगूसराय, और बहुत थक करके बेगूसराय में यात्रा करके पहुंची। अपने होटल के कमरे में दाखिल ही हुई कि देखा एक छोटी सी लड़की झुक करके बड़ी विनम्रता से कमरे में चली आई और मेरे पांव छू लिए। साथ में हमारे ऑर्गेनाइज़र थे, उन्होंने बताया कि ये है मैथिली ठाकुर और नई रोशनी नई उम्मीद है। मैंने कहा कि मेरे पास बैठो और कुछ सुनाओ। मैथिली ने तुरंत सुनाना शुरू कर दिया, और सुनाई भी तो क्या क्या चीज़ें, मेरी अपनी गुरु अप्पा जी की, उनके गाए हुए एक से एक दादरे, मेरी अपने गीत, क्या खटके क्या मुर्कियाँ क्या ताने क्या रियाज क्या सुकून, मैं तो फिदा हो गई। और मुझे लगता है कि ये मैथिली हिंदुस्तानी संगीत के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। सबसे अच्छी बात यह कि भारतीय परंपरा को लेकर के मैथिली चली है। आज भी जब वो राम का ब्याह गाती है, सुहर गाती है, तो मुझे लगता है कि जिस धुन को लेकर के इतने साल पहले मैं चली थी उसको कहीं ना कहीं पंख मिल गए मैथिली को सुन के। ढेर सारा आशीर्वाद और छा जाओ पूरी दुनिया में। बहुत लंबी लंबी तुमसे आशा है, खूब 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 सा प्यार।
ये मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मुझे सुनती है, मेरे गाने भी सुने इन्होंने, बहुत अच्छा लगा।
तो एक काम करते हैं, आज मालिनी जी का कुछ सुनते हैं तुम्हारे मुंह से।
बिल्कुल
मालिनी जी, ये आपके लिए।
बाबू रे काहे को प्यारी
बताओ, सब भाई बहनों में म्यूजिक का इंटरेस्ट कहाँ से है? मतलब पापा ने डांट डपट के सिखाया है?
ऐसा फील होता है कि हम लोग बने हैं इस चीज के लिए हैं, क्योंकि हमारे फैमिली में हमारे मम्मी पापा हमारे दादाजी सब लोग इसी चीज में आते हुए
बढ़ावा
हम लोग को बढ़ावा दिया है। और हम लोग बीच में अगर मन नहीं भी करता, हम लोग ने शुरू में इनकारा भी कि नहीं करना, हमको बहुत गंदा लगता है, नहीं फिर भी हम लोग को ले करके हम लोग को कन्विंस करते करते कि नहीं करो, अभी अभी टाइम है, ये टाइम है, वो करो, तो फिर अभी रियलाइज होता है कि कितना इम्पोर्टेंट है ये सब चीज।
तो कभी ऐसा हुआ मैथिली की पढ़ाई और म्यूजिक के बीच में एक जैसे होना टग ऑफ वॉर, पिस रहा है बच्चा कि क्या करे क्या ना करे?
ऐसा औरों के साथ होता है, सब लोग बोलते हैं जैसे यार मैं स्विमिंग क्लास जाती हूँ यार, टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए। लेकिन ये सब चीज मुझे शंकर जी की भी एक बात याद है, शंकर महादेवन जी, हम लोग जब शो में थे ना, उन्होंने जो बात बोली कि अगर आप दिल से दोनों काम कर रहे हो ना तो आपको निभाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि यार इस चीज़ के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, इस चीज़ के टाइम निकालना पड़ता है और अपने आप निकलता है जो इसको सीरियसली करना चाहता है। पढ़ने के लिए टाइम निकालना कोई बिग डील नहीं है, आपको 90% भी स्कोर करना है, 94 भी करना है, 100 भी करना है आपको, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप अगर मन लगा के पढ़ेंगे कुछ भी मुश्किल नहीं लगता है।
अब गौर कीजिए, मैथिली की प्रायोरिटी क्लियर है, संगीत पहले है, पढ़ाई के लिए टाइम निकालने नीचे बिग डील नहीं है। लेकिन एक चीज और है, रिसर्च ये भी कहती है कि जो बच्चे संगीत सीखते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप कहते हैं, तो आपकी मेमोरी ज्यादा शार्प होती है।
कोई भी मुझसे ये चीज पूछता है, ये बात मैं हर बार बोल ही देती हूँ कि अगर एक भी कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी में हाँ पढ़ाई के छोड़ करके तो मेमोरी आप,
खासकर संगीत, इसलिए भाई जो बच्चा इतनी मुश्किल ताने मतलब वो उसमें अपने आप में एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो जब जो बच्चा कम उम्र में वो सीख लेता है तो उसके लिए फिर मैथ्स फिजिक्स के फॉर्मूले ज्यादा कुछ रहते नहीं। चलो अब आपके ये फेम के सफर की बात करते हैं, तो सबसे पहला शो जिसमें आप गई वो था लिटिल चैंप्स, है ना? लेकिन उसमें आपको बहुत सक्सेस नहीं मिली। टेल अस मोर अबाउट इट।
मेरा पहला रियलिटी शो का सफर था, सब लोग बोलते थे इसको भेजो कहीं पे, इसको भी दुनिया सुनेगा, ये सब टीवी पे एक दिन ऐड आ रहा था, लिटिल चैंप्स का ऑडिशन है। हम लोग 4-5 बजे लग गए थे लाइन में,
माय गॉड, दिल्ली में?
हाँ दिल्ली में। तो हम लोग सोच रहे थे कि पहले ही हम ही जाएंगे, इतना सवेरे जा रहे हैं। उधर जाके देखे लोग रात भर सोए पड़े वहीं पे और 1 किलोमीटर लंबी लाइन ऑलरेडी है। मैं सोची चले घर वापस, क्या करेंगे अब सुबह में, कब तक ये लोग आएंगे और कब तक क्या होगा।
क्या उम्र थी आपकी?
मैं 10:30 साल, फिर रात में 8 बजे जाकर के मैं मेन कोच के सामने पहुंची। के
सुबह 4 बजे की खड़ी हुई?
हाँ,
माय गॉड,
पहला सबका एक्सपीरियंस ऐसा ही होता है। और उसमें भी देखती गई कि 10 बच्चे अंदर जा रहे हैं एक बार में सबको बाहर, फिर 10 बच्चे उसमें से लकीली 2 को सिलेक्ट किया, फिर 10 में से किसी 1 को सिलेक्ट किया। इतना डर लग रहा था मुझे, मैं अंदर जाके बिल्कुल कहाँ पर थी, हमें मुझसे सुनेंगे मुझसे पूछेंगे। फिर मैंने गाया घुंघरवा मोरा बाजे, प्योर वृंदावनी सारंग में द्रुत ख्याल गाई मैं। फिर मैं पहले राउंड में 10 में से 1 सिलेक्ट हुआ, उसमें मैं सिलेक्ट हो गई, फिर दूसरे में भी सिलेक्ट हो गई, तीसरे में भी सिलेक्ट हो गई। अब बारी आई, टिकट मिला, आप लोग मुंबई आ रहे हो, मुंबई गए, मुंबई में भी मैं 1 में सिलेक्ट हो गई। उधर अदनान सामी, कैलाश खेर और जावेद अली थे हमारे जज। फिर उसके अगले राउंड में जहाँ पे सब बच्चे कुछ 40 बच्चे बचे थे उसमें मैं भी थी, उसमें जाके मैं आउट हो गई। बहुत दुख हुआ कि अरे रह गया। फिर मैं सोची अब मुझे, उन लोगों ने ये बोला कि आपको थोड़ा सा बॉलीवुड की तरफ भी वो स्टाइल भी सीखना चाहिए,
मतलब सिर्फ प्योर क्लासिकल नहीं कहा।
मेरा अभी तक मेरा बॉलीवुड से कुछ था ही नहीं लेना देना, पिक्चर मैंने आज तक मैं सिर्फ 3 देखी है। फिर 2015 में इंडियन आइडल जूनियर में गई, उसमें भी मैं गई सेमी क्लासिकल, याद पिया की आई ठुमरी जो मेरा फेवरेट है वो सुनाई, और टॉप 20 तक मैं पहुंची थी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, सलीम मर्चेंट थे, शालमली कुलगड़े जी थी और विशाल डालानी जी। फिर उसमें उधर भी टॉप 20 में जाके रह गई। मैं सोची चलो अब अपना टाइम आएगा, कभी तो आएगा। फिर उसके अगले साल सलीम मर्चेंट ही थे जज एक शो में, आईजी ने सिंगिंग स्टार, उसमें मैंने गाया और मैं इंडिया में फर्स्ट आई, तो थोड़ा मनोबल मिला कि हाँ अब मैं कर सकती हूँ, अगर कोशिश करूंगी तो और अच्छा होगा।
मेरा टाइम आने वाला है,
टाइम आने वाला है, अभी आया नहीं, आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। फिर एक दिन फोन आया 2017 में, फिर वो बोले कि राइजिंग स्टार आ रहा है बेटा, आप आना ऑडिशन के लिए। फिर मैं गई, केसरिया बालम गई थी, हम तीनों गए थे और पहले वो बहुत इम्प्रेस हो गए थे, हमारे जो जज थे उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। फिर हम लोग मुंबई के लिए सेलेक्ट हो गए, फिर सब होते जा रहा था, होते जा रहा था। फिर इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को आँख से देखी, जिनको सुनते थे, टीवी पे देखते थे, शंकर महादेवन जी जो हमेशा से रोल मॉडल रहे हैं उनको देखी, मोनाली ठाकुर, दिलजीत दोसांझ सर, इतने सारे लोग, और काफ़ी एक्टर एक्ट्रेसेस आते रहे, और मेरे को लग रहा था सब कुछ सपने की तरह हो रहा है, होता ही जा रहा है बस। सर मैं प्रे करती थी ऐसा होता ही रहे, कभी ये चीज़ फेड ना हो, तो होता ही गया, होता ही गया। फिर मैं रनर अप बनी शो की और काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया।
केसरिया बालम मैं सुनना चाहती हूँ तुमसे, लेकिन उससे पहले मैं तुमको कुछ सुनाती हूँ,
एक और सरप्राइज।
हेलो मैथिली, हाउ आर यू? दिस इज अ सरप्राइज फॉर यू। आप तो जानती हो कि आप हमारे सबसे फेवरेट कॉन्टेस्टेंट थी राइजिंग स्टार में, और जब भी आप क्लासिकल गाते हो आपको मैं हमेशा मेरे विशेस, मेरे आशीर्वाद हमेशा मैं देता रहता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू फॉर ऑल द वंडरफुल म्यूजिक दैट यू डू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। गॉड ब्लेस।
अरे वाह, थैंक यू सो मच।
कुछ कहना है शंकर सर को?
वो हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं, बहुत 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 मानती हूँ मैं उनको, और इन्होंने मेरे बारे में बोला बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।
तो अभी बताओ मुझे, केसरिया बालम सुनाओगी या शंकर सर के लिए कुछ और सुनाओगी?
मैं केसरिया बालम सुनाऊंगी, क्योंकि जब मैंने ये परफॉर्म किया था सर के सामने सब बहुत खुश हुए थे। केसरिया
कर रहा, मैं कोई सवाल ना पूछूं, बस मैं इन बच्चों को सुनती रहूं। राइजिंग स्टार के बाद अब आप राइज एंड शाइन हो गई है ना, लोग पहचानने लगे, अब जहाँ जाती होगी लोग पहचानते होंगे, फेम मिल गई। कहीं लगता है बचपन खो तो नहीं रहा इसमें कहीं, ये स्पेशली ये और छोटे भाई हैं तुम्हारे?
मैंने माइंड पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ है, जब चीज़ आपके पर्सनालिटी में अगर वो चीज़ आप दिखने लग जाता है, लोग गौर करने लग जाते हैं कि हाँ थोड़ा चेंज आया है,
घमंडी एटीट्यूड आ गया है।
हाँ, वही वर्ड है जो जिससे बहुत डर लगता है मुझे, मैं बोलना भी नहीं चाहती। वो चीज़ जब चेंज अगर लोग ऑब्जर्व करने लग जाते हैं ना, तो वो लगता है कि हाँ, लोग को भी लगता है कि अरे इसके पीछे क्यों भागे, और भी बहुत सारे गाने वाले, क्योंकि कलाकार की कमी कहीं नहीं है, हर जगह हर गली में अच्छा कलाकार है अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है, आप लोगों को खुश रख सकते हो, वही सबसे बड़ी चीज़ है। और ये चीज़ मैं चाहती हूँ हमेशा रहे, इसके लिए वो दोनों वर्ड जो है उसको काफ़ी दूर
है, बिल्कुल दूर। दोनों वर्ड्स ये नहीं बोलना चाहती मैं, बोल रही हूँ घमंड एटीट्यूड, वाकई बहुत जरूरी है। घर में तुम लोग नॉर्मल भाई बहनों की तरह लड़ाई झगड़ा वो सब चलता रहता है?
नॉर्मल से भी खतरनाक होता है, ये समझिए, नॉर्मल से भी खतरनाक।
क्या क्या, तुम दोनों भी बताओ कुछ जरा, क्या चलता है घर में?
किसके लिए आपको पता है?
हाँ,
पबजी के लिए।
ओ पबजी, हाँ मैंने सुना है।
ये दोनों मेरे को मना करते तू मत खेल। हाँ। अभी तो पढ़ाई कर, तेरा यूटी आने वाला है। वैसे हम पढ़ाई कर लेता हूँ तब भी थोड़ा तो टाइम होता है।
हाँ।
थोड़ी देर के बाद मैं चुप हो जाता हूँ, नहीं करना कुछ। हाँ। पढ़ाई कर लेता हूँ। थोड़ी देर के बाद दूसरे रूम से आती है, ओए मार मार मार, इसके सामने सामने बंदा आ रहा, मार मार मार, ओए एनर्जी ड्रिंक दे और पेन किलर दे दे दे, मेरे पास वो कम हो गया।
देखिए, अपने बच्चे की उम्र के बच्चों का इंटरव्यू करने में ये नुकसान होता है कि आपको उनकी बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती। अब मुझे पबजी खेलना पड़ेगा एक बार समझने के लिए।
मुझे भी नहीं आता।
रियाज के टाइम पे मतलब ऐसे साथ बैठ के रियाज भी करते हो, सीरियस काम भी करते हो? कभी ऐसा तो नहीं होता कि बेटा आज तुम्हें प्रोग्राम में बताएंगे, ये धमकी
तो नहीं करता है? ऐसे ही बनियाद, ये करता है, ये करता है। ये सुबह जैसे हम लोग फ्लाइट में जा रहे हैं ना, मैंने एक दिन इसे बोला, सनी तेरा फेस ना बहुत वाइट लग रहा है क्योंकि इसका ड्राई स्किन है। मैं बोले सनी क्रीम लगा ले, बोला नहीं लगाना मेरे को, नहीं लगाना, अब सबके सामने नहीं लगाना मेरे को, जोर जोर से बोलता है ताकि नहीं लगाना मेरे को। अब मतलब छोटी छोटी बात पे हम लोग का झगड़ा होता है, कोई ऐसा सीन नहीं होता है, लेकिन अब मैं कोई चीज़ बोलती हूँ अभी मानता नहीं ना, फिर बाद में आज तो देखियो, आज देखियो प्रोग्राम में देखियो, मैं गाऊंगा ही नहीं, मैं बस लिपसिंग करूंगा, देखियो।
तो कभी किया तो नहीं इसने?
नहीं, कभी एक बार किया था, एक दो लाइन में क्या था, नहीं पापा ने इसे समझा दिया बहुत प्यार से।
कैसे, क्या किया था, बता बता।
पापा कभी हमें मार वार करके नहीं करते हैं।
हाँ।
पापा का बस आँख हमारा पूरा दुनिया।
नहीं, बदमाशी क्या की थी बता।
मैं लिपसिंग कर रहा था, दीदी एकदम से रुक गई।
हाँ।
तो पता चल गया, सोच रहा पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ।
मैंने एक लाइन गाया, दूसरे में मैं चुप हो गई, देखिए गा ही नहीं रहा था। उस दिन डांट पड़ी थी
सही वाली, क्या बोले बाबा। अच्छा, सब लोग तीनों जब साथ होते हो तो सबसे ज्यादा मस्ती कैसे करते हो, क्या करना पसंद करते हो?
खाली टाइम में हम लोग का होता है जैसे म्यूजिक, तो ऐसा है कि यूट्यूब हम लोग का ऐसा चलने लगा है ना कि हम लोग दिन भर उसी के बारे में सोच रहे थे कि ये गाना ये वीडियो लोगों को पसंद आया, तो इसी से मिलता जुलता कुछ होना चाहिए, अलग होना चाहिए। आधा टाइम तो सोचने में ही चला जाता है, मैं कहीं भी कुछ भी कर रही होती तो ये चीज़ में कि दूसरा गाना क्या होना चाहिए। आधा दिन 5-6 घंटा लग जाता है हम लोग को, एक ही बार में हम लोग 10-12 गाने रिकॉर्ड कर देते हैं।
अच्छा।
और फिर
धीरे धीरे उसको
अपलोड करते रहते हैं, रोज एक एक वीडियो अपलोड करते हैं ताकि।
तुम लोग यूट्यूब स्टार्स तो बन चुके हो, मैं देख रही थी कल, मतलब लाखों में व्यूज तुम्हारे जाते हैं।
हाँ, वो जाते हैं, मतलब हम लोगों ने 5-6 महीना पहले स्टार्ट किया था यूट्यूब और 8 लाख सब्सक्राइबर हो गए अभी।
हाँ, मैं देखा।
और मतलब काफी रैपिडली बढ़ रहे थे सब लोग एकदम से, ऐसे हम लोग एयरपोर्ट पे भी घुसते हैं ना और लोग पहचानने लग जाते हैं, अरे तुम वही बच्चे हो ना, तुम वही बच्चे हो ना जो जिसको फेसबुक पे सुनते हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं। फेसबुक लाइव में भी हम लोग शुरू किए थे और करते आ रहे हैं, हम लोग का कंटिन्यूटी बनता रहता है, हम लोग से इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, तभी पता चलता है हम लोग को और क्या सुनने का मन कर रहा है, हम लोग को और क्या करना चाहिए।
तो क्या चीज़ का फीडबैक ज़्यादा आता है, क्या सुनना चाहते हैं आजकल
सब लोग? लोकगीत, सब लोग लोकगीत से मतलब इतना ज्यादा, राम सीता जी का राम विवाह सुनाइए, ये सुनाइए, सोहर सुनाइए। मुझे लगता था जब हम लोग जब फोक ही अपलोड करते थे, मैं ये सोचती थी, पापा को भी बोलती थी कि पापा ये कोई नहीं सुनता है आजकल, सब लोग को देखो, मेरे फ्रेंड्स को देखो, वो लोग जो टीवी पे आते हैं वो लोग सारे अभी बॉलीवुड ही गाते हैं और गिटार बजाते हैं, वो लोग यही चीज करते हैं, बैंड है उनका, कीबोर्ड बजाते हैं, होता है, हम लोग हारमोनियम तबला करते हैं, तुम लोगों को पसंद नहीं आएगा। पापा बोले तुम करके तो देखो। शुरुआत में ऐसा हुआ कि हाँ एक दिन में आ रहे हैं, 500 व्यूज आ रहे हैं, ऐसा होता गया। अब हमारा होता है अपलोड करते ही हमारा चला जाता है 50,000 व्यूज, 60,000 व्यूज, तो काफ़ी लोग ऐसा लगता है कि हाँ लोग वेट कर रहे होते हैं हमारे नेक्स्ट जो लोकगीत हम लोग आएंगे।
अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों ने इतनी बिहार की बात भी कर ली, अगर कुछ भोजपुरी अभी नहीं सुनाया तो सब शो देखने वाले बड़े नाराज हो जाएंगे ना, तो आगे की बातचीत करने से पहले कुछ भोजपुरी पहले सुन लेते हैं।
बिल्कुल।
अरे ऐसना मनोहर मंगल मूरत सुहावना सूरत हो, ए राजा जी ए राजा जी ए राजा जी ए करे तारा हलन, हाँ जरूरत मूरत खूब सूरत हो, ए राजा जी ए करे तारा हलन, हाँ जरूरत मूरत खूब सूरत हो, ऐसना मनोहर मंगल मूरत सुहावना सूरत हो, ए राजा जी ए राजा जी
बात है मैथिली। लेकिन अभी पिछले कई सालों में एक ही हो गया था कि भोजपुरी मतलब कुछ वल्गर होगा, कुछ गंदा सा होगा। तुम जब सीखती हो भोजपुरी लोकगीत तो क्या बात दिमाग में रहती है?
मेरे पापा जी का भी यही मोटिव था कि इसको, हमारे यहाँ पे बहुत सारे कलाकार भी हैं, हमारे बिहार में बहुत सारे हैं गाने वाले, लेकिन यही है मतलब शुरुआत में थोड़े पारंपरिक पता चल गया कलाकार है, उसके बाद से दे टर्न्ड इनटू वही समथिंग हो। पॉपुलैरिटी बहुत होता है जो ये सब गाते हैं, बहुत सारे फैन बेस होते हैं उनके, लेकिन हम लोग उन पे हावी पड़े, हमारे ऑडियंस जागरूक हो, जो वैसा सुनने वाले हैं वो ऐसा भी सुने। मैंने भी जब गाना शुरू किया मैथिली भाषा में तो मुझे सिखाया ही बस राम सीता विवाह, उसके बाद नचारी शंकर जी का भगवती गीत, काफ़ी बार मुझे ये सुनने को मिला है, काफ़ी लोग मिलते हैं कि हमने भोजपुरी गाना सुनना ही छोड़ दिया था, लेकिन जब से आपको सुन रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में आप लोगों का वीडियो देखे, तब से हम आपको सुनना शुरू करें, तब से हमने भोजपुरी सुनना शुरू किया है, और इतना अच्छा लगता है ये सब सुन करके कि हम उस दिशा में बढ़ते जा रहे हैं और लोग हमें पसंद करते जा रहे हैं।
तो सही दिशा में जा रहे हो, मंजिल क्या सोच के रखी है अपने लिए, कुछ सोचा है या नहीं सोचा है?
रोज अलग अलग सोचती हूँ। अनलिमिटेड है सब कुछ, पता ही
मतलब जैसे फोक सिंगिंग ही करनी है या कभी प्योर क्लासिकल में जाना है या बॉलीवुड में जाना है, कुछ सोचा है करियर?
मैं तैयारी हर चीज के लिए करती हूँ। मैं रोज रोज मैं जो सुनती हूँ, मैं भी यूट्यूब खूब सुनती हूँ, रोज अलग अलग कलाकार को हर टाइम पे अलग अलग आर्टिस्ट को सुनती हूँ, तो मुझे ये नहीं है कि मुझे एक ही चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रेम है। मैं हर चीज़, मुझे गज़ल गाना भी बहुत पसंद है और फोक म्यूज़िक के साथ साथ बॉलीवुड भी गाना बहुत पसंद है। मतलब मैं चाहती हूँ कि लोग को, अगर किसी भी लोग को बोला जाए कि मैथिली ठाकुर को पहचानते हो, तो सब बोले हाँ। बस ऐसा होना चाहिए कि मैथिली ठाकुर नाम सुनते ही बोले कि वही लड़की है जो बहुत अच्छा गाती है।
बहुत बढ़िया, गज़ल तुमने बोला तो कुछ सुनाओ ना, मुझे पता नहीं था कि तुम गज़ल भी गाती हो।
हाँ मैं बिल्कुल सुनाना चाहूँगी।
तेरे
मुझे वाकई बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम गजल भी गाती होगी। अच्छा एक बात बताओ, सब कुछ तुम लोग इतना खूबसूरत गा रहे हो, फोक वगैरह, लेकिन कभी मन करता है कि अच्छा चलो थोड़ा सा बॉलीवुड भी गा लें?
हाँ, बॉलीवुड भी, पंजाबी, राजस्थानी, सब मन करता है गाने का।
हाँ,
इसको बहुत पसंद है।
क्या पसंद है?
दगाबाज रे गाना
सुनाओगे कुछ थोड़ा सा?
हाँ
चलो। लाइव प्रोग्राम्स, कई बार ऐसा होता होगा कि मौका है तो बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलते होंगे, थक जाते हो तुम लोग कि अब पापा अब मत लो कोई प्रोग्राम, अब नहीं करना, ऐसा भी होता है कभी?
हम लोग अभी, जैसे पहले हम सिर्फ बिहार में प्रोग्राम करते थे, अलग अलग ज़िलों में, अब धीरे धीरे वो बिहार से उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के कम से कम हमने अभी तक 12 या 13 हैं महोत्सव जिसमें हम लोगों ने परफॉर्म किया है। और यूपी में ये जाके मुझे पता चला कि हम लोगों को लगता था सिर्फ बिहार के लोग हमको सुनते हैं, लेकिन वो भाषा जो हमारा मैथिली भाषा का भी गाना है, मगही, ये सब चीज़ें, वो उत्तर प्रदेश के भी लोग उतने ही चाव से सुनते हैं, ये जाके हमको पता चला उत्तर प्रदेश में। काफ़ी बार ऐसा होता है, रोज़ रोज़, जैसे हम लोग आज फ्लाइट से लैंड किए, आज हम लोग पहुँचे घर पे और एक बैग पैक है, अब ये बैग छोड़ कर दूसरा बैग लेकर फिर से एयरपोर्ट निकलना है, मतलब इतना बिजी होता है। हम लोग को मज़ा आता है इस चीज़ में, लोगों से मिल के और वो लोग जो बात करते हैं, इंटरेक्ट करके, मुझे काफ़ी इन्जॉय फील करती हूँ। हम लोग तो शुरुआत में ये सोचते हैं एरोप्लेन में बैठ के फील कैसा होता है, और अभी ऐसा हो गया कि इतना सारा बंडल बोर्डिंग कार्ड का पड़ा हुआ है,
तो काफी खुशी होती है कि एक लेवल से उठते 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 धीरे धीरे, और काफी एंजॉय करते हैं हम उस सब चीज को। अगर ये चीज अचानक से अगर किसी के साथ होने तो रियलाइज नहीं करता कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है।
सही बात।
लेकिन मैं कीर्तन से लेकर के जागरण से लेकर के चौकी, उसके बाद छोटे छोटे शादी में परफॉर्म करना, उसके बाद जिला स्थापना दिवस, फिर महोत्सव, फिर ऐसी जगह उठ करके, फिर आपके सामने मैं अभी बैठी हूँ।
अरे नहीं नहीं, हम इतने
अरे नहीं, आपको नहीं मालूम हम लोग के अंदर कितना एक्साइटमेंट दिन भर चलता रहता है। फिर न्यूज चैनल्स में स्टूडियो के अंदर बैठ के गाना, मतलब सब होता जा रहा है, होता जा रहा है।
मैं चाहूंगी हमेशा ऐसा होता रहे। होली का मौका है, मैं तुमसे होली सुनूंगी, लेकिन उससे पहले अपनी एक फरमाइश मैं इन बच्चों से करना चाहती हूँ, और मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोगों की ये फरमाइश होगी। छाते लग
छीन है उसे लेना, मिलाई है छा
शब्द नहीं है मेरे पास वाकई। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ, इतना खूबसूरत, चाहे आप देखिए फोक गा दिया, इन तीनों ने मिलकर परफॉर्म कर दिया, शास्त्रीय संगीत, गज़ल हो गई, सूफी हो गया, और क्यों हमारे टीवी के रियलिटी शो वाले बच्चों से कहते हैं कि बॉलीवुड गाओ? मतलब मुझे तो सीरियसली आज ये कहना पड़ेगा कि थोड़ा अपना दिमाग बॉलीवुड से हटाइए, क्योंकि हर तरह के संगीत के चाहने वाले हैं जो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। होली का मौका है, बिना होली सुने मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, लेकिन उससे पहले एक आखिरी मैसेज इस शो का।
नमस्कार, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ खासकर मैथिली ठाकुर के लिए। एक्चुअली चाइल्ड प्रोडिजी है, उनके भाई उनके साथ बजाते हैं और वो बड़ा 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 समा बांध देते हैं, और मैथिली हमारी ज़िंदगी में वो वाले रंग लेके आई है, खासकर ब्रज के, मिथिला के, और उस तरह की जो होरियाँ हैं और ठुमरियाँ हैं, उस तरह के रंग जो लेके आई है वो लाजवाब है। मैथिली बहुत अच्छा गा रही है, मैथिली बहुत अच्छे रंग हमारी ज़िंदगी में घोल रही है, और बहुत यंग है अभी, तो उनके पास ज़िंदगी है बहुत अच्छा काम करने के लिए, और आई विश हर ऑल द बेस्ट। आई थिंक मैथिली को जो भी तालीम दे रहा है उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत तैयारी के साथ गा रही है, कमाल का गा रही है। थैंक यू।
अरे हम लोग जब घर में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं फ़ोन से अपने सिंपली बैठ करके, हमको बिल्कुल नहीं आइडिया होता कि अपलोड होने के बाद कौन
देख
सुन रहा है। मैं एक होली सुना रही हूँ, लेकिन स्वानंद सर आपके लिए एक लाइन इस गाने का।
बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरा मन देखने चला एक सपना,
जैसे कि मैं लगातार कह रही हूँ मेरा मन नहीं भर रहा इन बच्चों को सुनने से, लेकिन मजबूरी है, हमें ये शो ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन आज एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी बेटी की उम्र की है मैथिली, और ऋषभ और अयाची तो और छोटे हैं, लेकिन वाकई आज मुझे बहुत गर्व और खुशी महसूस हो रही है कि हमने ज़िंदगी विद ऋचा के सीज़न 3 की शुरुआत इन खूबसूरत बच्चों के साथ की, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएँ जो बच्चे हमारी परंपराओं को, हमारी कला और संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं तुम तीनों से कहना चाहती हूँ, हमेशा ऐसे ही रहना। हाँ, मम्मी टाइप साउंड कर रहे हो ना, हमेशा ऐसे ही रहना।
सब बड़े ऐसे ही बोलते हैं।
और बिल्कुल दिमाग खराब मत होने देना, है ना, अपनी इनोसेंस ऐसे ही रखना, लड़ते झगड़ते रहना, दीदी को थोड़ा धमकी वमकी देते रहना, बेटा आज स्टेज पे बताऊंगा तुमको, और ऋषभ बहुत शर्माते हो, थोड़ा सा बोलना सीख लो थोड़ा सा और।
ये बहुत पापा की तरह है बिल्कुल।
नहीं लेकिन तबला बहुत अच्छा बजाते हो। खूब रियाज करना, सबसे बड़ी बात है कि खूब रियाज करना। कभी भी वो दिन ना आए जब तुम्हें लगे कि बहुत रियाज कर लिया, अब जरूरत नहीं है।
बस यही चीज
है ना। एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से है शुभकामनाओं के साथ, उसके बाद मैं चलते चलते खेले मसाने में होरी सुनूंगी।
बिल्कुल।
खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी।